एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके घरों से, हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ा है, रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण।
हाँ, ये नीले हरे डब्बे, प्लास्टिक अलग, कागज अलग, हम सब करते हैं।
बिल्कुल, और मन में एक तसल्ली सी रहती है कि भाई हम पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? क्या रिसाइकलिंग वाकई उतनी कारगर है जितना हम मानते हैं?
यही यही बड़ा सवाल है, और आज की हमारी चर्चा का केंद्र भी यही है। हमें जो स्रोत मिले हैं वे हमें इस मुद्दे पर थोड़ा, क्या कहते हैं, अलग ढंग से सोचने को मजबूर करते हैं।
हाँ, किसके काम पर आधारित है ये? खास तौर पर फिन जॉर्गेंसन के काम के जरिए। वे डेनमार्क के एक जाने माने औद्योगिक पारिस्थितिकी विज्ञानी हैं, मतलब इंडस्ट्रियल इकोलॉजिस्ट, और सस्टेनेबल सिस्टम्स के विशेषज्ञ भी।
अच्छा, फिन जॉर्गेंसन।
हाँ, उनकी किताब है रिसाइकलिंग, एक भ्रामक भ्रम और चक्रीय समाधान। इसी के मुख्य विचार आज हमारी बातचीत का आधार बनेंगे।
और ये विषय तो आज बहुत ही अहम हो गया है ना। हम सब देख रहे हैं अपने आसपास कचरे के पहाड़ ऊंचे होते जा रहे हैं, पर्यावरण पर इतना दबाव है।
बिल्कुल, तो ऐसे में ये सवाल पूछना तो लाजमी है कि कहीं रिसाइकलिंग, जिसे हम हमेशा से एक समाधान मानते आए हैं, कहीं वो खुद ही एक बड़ी समस्या का हिस्सा तो नहीं बन गया?
चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा खोल कर देखते हैं।
तो पहले थोड़ा फिन जॉर्गेंसन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उनका नजरिया काफी अहम है।
हाँ बताइए, कौन है ये?
जैसा मैंने कहा, वो डेनमार्क की तकनीकी यूनिवर्सिटी DTU में प्रोफेसर हैं, और उन्हें 2 दशकों से ज्यादा का अनुभव है इस फील्ड में।
2 दशक काफी लंबा समय है।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उनका काम सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों, नगर पालिकाओं, यहां तक कि यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी जैसी संस्थाओं के साथ जमीनी स्तर पर काम किया है।
अच्छा, तो मतलब प्रैक्टिकल अनुभव भी है, सिर्फ थ्योरी नहीं।
बिल्कुल, यही चीज उनके नजरिए को खास बनाती है। वो सिर्फ एक अकादमिक नहीं है, उन्हें फैक्ट्रियों में, कचरा प्रबंधन की जगहों पर और उन मीटिंग रूम्स में भी समय बिताया है जहां ये फैसले होते हैं कि कोई चीज कैसे बनेगी और इस्तेमाल के बाद उसका क्या होगा।
और उनका वो स्कैंडिनेवियाई बैकग्राउंड जहां पर्यावरण को लेकर काफी काम हुआ है।
हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। वो विज्ञान की बारीकी और इंजीनियरिंग की व्यावहारिकता दोनों को साथ लेकर चलते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम भी बताते हैं और सोल्यूशन की तरफ भी सोचते हैं।
समझ गए। तो फिर इन स्रोतों और जॉर्गेंसन के विचारों का निचोड़ क्या है? मुख्य तर्क क्या है उनका?
अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो उनका मुख्य तर्क यह है कि रिसाइकलिंग का हमारा जो मौजूदा सिस्टम है ना, जिस तरह से हम इसे समझते हैं और करते हैं,
हाँ,
वो असल में अधूरा है।
अधूरा मतलब?
अधूरा, कई बार अप्रभावी, और कभी कभी तो उल्टा असर करने वाला। मतलब वो कचरा संकट को और बढ़ा सकता है।
ओह, ये तो चौंकाने वाली बात है। हम तो सोचते हैं हम अच्छा कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, वो इसी आम धारणा को चुनौती देते हैं कि भाई नीले या हरे कूड़ेदान में कुछ डाल दिया तो बस पर्यावरण की रक्षा हो गई।
लेकिन ऐसा क्यों मानते हैं वो?
उनका मानना है कि रिसाइकलिंग पर हमारा ये जो जुनून है वो हमें एक तरह का, क्या कहते हैं, नैतिक लाइसेंस दे देता है।
नैतिक लाइसेंस मतलब?
मतलब हम रिसाइकल करके अच्छा महसूस करते हैं
हाँ?
और फिर अपनी बाकी खपत की आदतों पर सवाल नहीं उठाते। अरे मैंने तो रिसाइकल कर दिया,
हाँ?
अब मैं और खरीद सकती हूँ।
हाँ, ये बात तो कुछ हद तक सही लगती है। एक तरह की खाना पूर्ति हो जाती है।
बिल्कुल, और ये हमें असली और ज्यादा मुश्किल समाधानों से दूर ले जाता है।
तो अगर सिर्फ रिसाइकलिंग से बात नहीं बनेगी तो फिर रास्ता क्या है? क्या बताते हैं वो?
योर्गेंसन और संबंधित स्रोत इशारा करते हैं एक बड़े बदलाव की तरफ। हमें कचरा प्रबंधन की सोच से आगे बढ़ना होगा।
आगे बढ़कर कहाँ जाना है?
संसाधन संरक्षण पर ध्यान देना होगा, रिसोर्स कंजर्वेशन। इसका मतलब है एक असली चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना।
सर्कुलर इकोनॉमी, इसके बारे में सुना तो है, इसमें क्या होता है?
इसमें जोर है खपत कम करना, ऐसी चीजें डिजाइन करना जो ज्यादा चलें और आसानी से अलग हो सकें, और चीजों को फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल करना, रीयूज करना।
अच्छा, मतलब फेंकना आखिरी विकल्प हो।
बिल्कुल, और सबसे क्रांतिकारी बात जो इन विचारों से सामने आती है वो ये है कि कचरा कोई जरूरी बुराई नहीं है, ये कोई कुदरती चीज नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये हमारे डिजाइन और हमारी कल्पना की विफलता है, अ फेलियर ऑफ डिजाइन एंड इमेजिनेशन।
वाह, ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है।
हाँ, और इन विचारों का मकसद हमें सिर्फ एक निष्क्रिय अच्छे इरादे वाली रिसाइक्लर से बदलकर एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनाना है जो सिस्टम में बदलाव की मांग करे।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है जैसा वो कह रहे हैं? शुरुआत करते हैं उस नीले कूड़ेदान से। उसका वादा क्या था और खतरा क्या है?
हाँ, तो रिसाइक्लिंग की शुरुआत तो नेक इरादे से हुई थी, जैसे युद्ध के समय स्क्रैप इकट्ठा करना या 70 के दशक में पर्यावरण आंदोलन।
हाँ, वो तस्वीरें देखी हैं पुरानी।
लेकिन आज इसकी भूमिका काफी बदल गई है। स्रोत बताते हैं कि आज ये काफी हद तक एक मनोवैज्ञानिक राहत बन गया है।
मनोवैज्ञानिक राहत कैसे?
भाई, ये करना आसान लगता है। हमें अपने उपभोग से जुड़े अपराध बोध से थोड़ी मुक्ति मिल जाती है। लगता है चलो कुछ तो अच्छा किया।
हाँ, बिना अपनी जीवन शैली में ज्यादा बदलाव लाए।
एग्जैक्टली। तो तर्क ये है कि इसका काम अब पारिस्थितिकी से ज्यादा मनोवैज्ञानिक हो गया है। फील गुड फैक्टर ज्यादा है।
लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है, जैसा आपने पहले इशारा किया। ज्यादातर जिसे हम रिसाइक्लिंग समझते हैं वो असल में डाउन साइक्लिंग है। इसका क्या मतलब हुआ, ये थोड़ा समझाइए।
जरूर। देखिए, असली रिसाइक्लिंग होती है बंद लूप, क्लोज्ड लूप। जैसे एक कांच की बोतल पिघलाई और वैसी ही नई कांच की बोतल बना दी, क्वालिटी वही रही।
ठीक है।
लेकिन ज्यादातर मामलों में, खासकर प्लास्टिक के साथ, खुला लूप, ओपन लूप, या जिसे डाउन साइक्लिंग कहते हैं, वो होता है।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करके वो फ्लीस वाली जैकेट बना दी, या सड़क बनाने के मिश्रण में डाल दिया।
हाँ हाँ, सुना है इसके बारे में।
अब वो चीज फिर से बोतल नहीं बन सकती, और वो जैकेट या सड़क का हिस्सा भी अंततः कचरे में ही जाएगा। हर बार रीप्रोसेस करने पर मटेरियल की क्वालिटी गिरती जाती है।
अच्छा, तो मतलब चीज अपनी असली कीमत खो देती है। और इसमें तकनीकी दिक्कतें भी तो आती होंगी, छांटना, साफ करना।
बहुत ज्यादा। जरा सोचिए, हमारे घरों से जो मिला जुला कचरा जाता है रिसाइकलिंग के लिए, उसमें कितने तरह के प्लास्टिक होते हैं, साथ में कागज, धातु, शीशा, और अक्सर खाना भी लगा होता है।
हाँ, ये तो है।
इनको अलग अलग करना, साफ करना बेहद मुश्किल और महंगा काम है। जरा उन चिप्स के पैकेट या जूस के टेट्रा पैक के बारे में सोचिए। कितनी परतें होती हैं उनमें अलग अलग चीजों की, उन्हें कैसे अलग करेंगे?
नामुमकिन सा लगता है।
और कड़वी सच्चाई ये भी है, जो स्रोत बताते हैं, कि अक्सर नया कच्चा माल, मतलब वर्जन मटेरियल, इस्तेमाल करना रिसाइकल किए हुए माल से सस्ता पड़ता है।
सच में, ये तो उल्टी बात हो गई।
हाँ, नतीजा वास्तविक रिसाइकलिंग दरें, खासकर प्लास्टिक की, दुनिया भर में बहुत कम है, शायद 10% से भी कम।
सिर्फ 10%? ये तो वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और पहलू है कि हमारे रिसाइकल बिन में डाला गया सामान आखिर जाता कहाँ है? सुना ये कहीं और भेज दिया जाता है।
हाँ, ये कचरे का वैश्विक सफर वाला हिस्सा आंखें खोलने वाला है। विकसित देश अक्सर अपना प्लास्टिक या कागज का कचरा, जिसे वो खुद प्रोसेस नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते, वो विकासशील देशों को निर्यात कर देते हैं।
मतलब अपना कचरा दूसरों के यहाँ भेज देते हैं।
बिल्कुल। स्रोतों में वर्णन मिलता है कि कैसे यूरोप के किसी बंदरगाह से प्लास्टिक की गांठें लादकर दक्षिण पूर्व एशिया के किसी देश में भेजी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां मजदूरी सस्ती है और पर्यावरण नियम शायद उतने सख्त नहीं।
और वहां क्या होता है उस कचरे का?
वहां इन्हें अक्सर हाथ से छांटा जाता है, बहुत ही खराब परिस्थितियों में। जो थोड़ा बहुत रिसाइकल हो सकता है वो कर लिया जाता है, बाकी या तो जला दिया जाता है या लैंडफिल में डाल दिया जाता है।
तो ये तो एक तरह का अन्याय हुआ। हम यहाँ अच्छा महसूस कर रहे हैं रिसाइकल करके, और उसका बोझ कोई और उठा रहा है।
सही कहा। और जब चीन ने 2017-18 में नेशनल स्वॉर्ड नीति के तहत ऐसे दूषित कचरे का आयात बंद कर दिया, तो पूरे वैश्विक रिसाइकलिंग बाजार में हड़कंप मच गया था। इससे पता चला कि ये सिस्टम कितना नाजुक और कितना अन्यायपूर्ण है।
तो ये समस्या सिर्फ हमारे कूड़ेदान तक सीमित नहीं है, इसकी जड़ें कहीं और गहरी हैं। शायद वहीं जहां चीजें बनती हैं, उनके डिजाइन में।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही अगला महत्वपूर्ण बिंदु है डंप के लिए डिजाइन। तर्क यह है कि कचरा तब नहीं बनता जब हम चीज फेंकते हैं,
बल्कि तब बनता है जब उसे डिजाइन किया जाता है।
एग्जैक्टली। आजकल के उत्पाद कैसे बन रहे हैं? कई उत्पादों को जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है कि वो जल्दी खराब हों या फैशन से बाहर हो जाएं। इसे प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं।
हाँ, जैसे मोबाइल फोन, हर साल नया मॉडल आ जाता है और पुराने वाले में अपडेट आने बंद हो जाते हैं।
बिल्कुल। साथ ही चीजों को बनाने में अक्सर ऐसी मिलीजुली सामग्री, कॉम्पोजिट मटेरियल्स इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें अलग करना और रिसाइकल करना नामुमकिन होता है।
जैसे वो खाने के पैकेट जिनमें प्लास्टिक और एल्यूमिनियम की परतें चिपकी होती हैं।
हाँ, वही। सुंदरता और कम लागत को अक्सर टिकाऊपन, मरम्मत की आसानी और रिसाइक्लेबिलिटी पर तरजीह दी जाती है। लेखक इन्हें मॉन्स्ट्रस हाइब्रिड्स यानी राक्षसी संकर कहते हैं।
राक्षसी संकर, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। तो ये डिजाइन की समस्या सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था के मौजूदा मॉडल से जुड़ी है, वो लो बनाओ फेंको वाला मॉडल।
हाँ, टेक मेक डिस्पोज, ये लीनियर मॉडल। ये मॉडल मानता है कि प्राकृतिक संसाधन असीमित हैं, धरती से लो, बनाओ, इस्तेमाल करो और फेंक दो।
और ये भी मानता है कि कचरा फेंकने की कोई खास कीमत नहीं है, या वो कीमत समाज उठाए।
बिल्कुल, कचरा निपटान को एक बाहरी लागत, एक्सटर्नैलिटी मान लिया जाता है। ये मॉडल हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने और इस्तेमाल करके फेंक देने के लिए उकसाता है। सोचिए, ऑनलाइन शॉपिंग में एक छोटी सी चीज भी कितने बड़े डिब्बे और प्लास्टिक में पैक होकर आती है।
हाँ, ये तो रोज का अनुभव है।
इसकी तुलना अगर हम प्रकृति से करें, जहाँ कुछ भी बेकार नहीं जाता, सब कुछ किसी न किसी रूप में वापस सिस्टम में आ जाता है, तो ये लीनियर मॉडल कितना अप्राकृतिक और अस्थिर लगता है।
और इस सबके बीच हम आते हैं, आम लोग, जो अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या रिसाइकल करें और क्या नहीं। यहीं पर विश साइकिलिंग का जिक्र आता है। ये क्या चीज है?
विश साइकिलिंग, ये एक दिलचस्प शब्द गढ़ा गया है। इसका मतलब है जब हम किसी चीज के बारे में पक्के तौर पर नहीं जानते कि वो रिसाइकिल हो सकती है या नहीं।
नहीं, लेकिन हम अच्छी भावना से उसे रिसाइकिलिंग बिन में डाल देते हैं,
इस विश या उम्मीद के साथ कि शायद हो जाए।
बिल्कुल,
जैसे पिज्जा का गंदा डिब्बा, या प्लास्टिक का कोई खिलौना, या कोई ऐसा प्लास्टिक जिस पर नंबर नहीं लिखा। हमें लगता है, चलो डाल देते हैं, शायद कुछ हो जाए।
हम इसे कई लोग शायद अनजाने में ऐसा करते होंगे, लगता है कि कुछ तो कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं।
हाँ, और स्रोत बकाके हैं कि ये हमारी व्यक्तिगत गलती नहीं बल्कि सिस्टम की खामी है। नियम इतने भ्रामक हैं, उत्पादों पर लेबलिंग अक्सर गुमराह करती है। वो तीन घूमने वाले तीर वाला निशान याद है?
हाँ, चेजिंग एरो सिंबल।
उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि चीज आसानी से रिसाइकल हो जाएगी। नतीजा क्या होता है? एक गलत चीज, जैसे वो गंदा पिज्जा बॉक्स, पूरे रिसाइकलेबल कचरे के ढेर को, पूरे बैच को दूषित कर सकती है।
और फिर वो पूरा का पूरा ढेर लैंडफिल में चला जाता है
अक्सर। हाँ, और कंपनियां भी कई बार ग्रीन वॉशिंग के जरिए इस भ्रम का फायदा उठाती हैं। खुद को पर्यावरण हितैषी दिखाने के लिए रिसाइकलिंग का ढिंढोरा पीटती हैं, जबकि उनके उत्पाद शायद ठीक से रिसाइकल होते ही ना हो।
बाप रे, ये तो पूरा जाल सा लगता है।
तो ये तो हुई समस्या की परतें, लेकिन क्या समाधान भी है? स्रोत एक आर हायरार्की या आर पदानुक्रम का रास्ता दिखाते हैं। ये क्या है?
हाँ, ये समाधानों का एक क्रम है, एक हायरार्की, और इसमें रिसाइकलिंग सबसे आखिर में आता है, सबसे कम पसंदीदा विकल्प के तौर पर, सबसे आखिर में। हम तो उसे सबसे पहले रखते हैं।
यही तो सोच बदलनी है। असली जोर समस्या को जड़ से पकड़ने पर है, यानी अपस्ट्रीम समाधानों पर। इस पदानुक्रम में सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण है रिफ्यूज, मना करना।
मना करना,
हाँ
हाँ,
सबसे शक्तिशाली कदम। जिसकी जरूरत नहीं उसे खरीदे ही नहीं। उस मुफ्त मिलने वाले प्लास्टिक पेन को मना कर दें, उस एक्स्ट्रा कैरी बैग को मना कर दें, फास्ट फैशन के हर नए ट्रेंड के पीछे भागने से मना कर दें।
हाँ, ये सुनने में आसान है पर करने में मुश्किल।
मुश्किल है पर सबसे असरदार है। इसके बाद आता है रिड्यूस, कम करना। अपनी खपत को मौलिक रूप से घटाएं, कम खरीदें, कम इस्तेमाल करें।
ठीक है, रिफ्यूज, रिड्यूस, अगला
रीयूज, पुनः उपयोग। चीजों को उनके असली रूप में बार बार इस्तेमाल करें। अपनी पानी की बॉटल, शॉपिंग बैग, कॉफी मग साथ रखें। रीफिल करने वाले सिस्टम्स को बढ़ावा दें। सेकेंड हैंड चीजें खरीदें।
रीयूज, ये तो हम पहले करते भी थे काफी।
बिल्कुल। फिर आता है रिपेयर, रीमैन्युफैक्चर, मरम्मत, पुनर्निर्माण। चीजों को फेंकने के बजाय उनकी मरम्मत करवाएं। स्थानीय मिस्त्री, मोची, दर्जी का समर्थन करें। चीजों को नया जीवन दें।
रिपेयर, ये भी कम होता जा रहा है आजकल। चीजें बनती ऐसी हैं कि मरम्मत मुश्किल हो।
हाँ, डिजाइन वाली बात। और इस लिस्ट में सबसे नीचे आखिरी पायदान पर आता है रिसाइकल।
सबसे नीचे?
हाँ, ये आखिरी उपाय होना चाहिए, सिर्फ उन चीजों के लिए जिन्हें ऊपर के आर्स के जरिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका। ये पूरी सोच को पलट देता है। हमें बेहतर रिसाइकलिंग नहीं बल्कि कम रिसाइकलिंग की जरूरत है।
मतलब लक्ष्य रिसाइकलिंग कम करना है, बढ़ाना नहीं। अरे वाह।
बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि दुनिया में इसके उदाहरण मौजूद हैं, जैसे जर्मनी का पांड सिस्टम, जहां बोतलों और कैन पर डिपॉजिट लगता है। नतीजा 98% से ज्यादा वापस आ जाते हैं।
98%? कमाल है।
या जापान का कामाकात्सू शहर है, जो लगभग जीरो वेस्ट लक्ष्य पर काम कर रहा है। वहां 45 अलग अलग श्रेणियों में कचरा छांटा जाता है।
45?
हाँ, या पाटागोनिया जैसी कंपनियां हैं जो अपने कपड़ों की मरम्मत पर जोर देती हैं। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, हकीकत बन सकता है और बन भी रहा है।
लेकिन ये तो कुछ उदाहरण हुए, बड़े पैमाने पे बदलाव के लिए तो शायद और कुछ चाहिए होगा। सिर्फ व्यक्तिगत कोशिशें काफी होंगी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यवस्थागत बदलाव की जरूरत है और यहीं पर नीति यानी पॉलिसी का रोल आता है। इसमें EPR का जिक्र बार बार आता है।
हाँ, EPR, ये क्या है? एक्सटेंडेड कुछ?
एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व। ये एक बहुत शक्तिशाली नीतिगत उपाय है।
कैसे काम करता है ये?
इसका मूल विचार ये है कि किसी उत्पाद के जीवन के अंत में जब वो कचरा बन जाता है तो उसके कलेक्शन, सॉर्टिंग और रिसाइकलिंग या निपटान की जिम्मेदारी और खर्चा शहर या टैक्स देने वालों पर नहीं बल्कि उसे बनाने वाली कंपनी पर होना चाहिए।
अच्छा, तो मतलब कंपनी को ही अपने प्रोडक्ट का कचरा संभालना पड़ेगा।
हाँ, अब सोचिए, अगर कंपनी को पता है कि उसे ही अपने बनाए उत्पाद का कचरा संभालने का खर्चा उठाना पड़ेगा तो वो क्या करेगी?
वो उसे डिजाइन ही ऐसा करेगी कि वो ज्यादा टिकाऊ हो, आसानी से मरम्मत हो सके, और अगर रिसाइकल करना पड़े तो आसानी से और सस्ते में हो जाए।
एग्जैक्टली। ये कंपनियों को सीधे तौर पर एक वित्तीय प्रोत्साहन देता है बेहतर डिजाइन बनाने के लिए। ये गेम चेंजर हो सकता है।
ये तो कमाल का आइडिया है। और क्या नीतियां हो सकती हैं?
इसके अलावा लैंडफिल टैक्स बढ़ाना ताकि कचरा फेंकना महंगा हो, कुछ खास तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना और चीजों के पुनः उपयोग यूज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे हर जगह पानी के रिफिल स्टेशन हो या टूल लाइब्रेरीज हो जहां से आप औजार उधार ले सकें।
ये सब मिलकर शायद एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। और अंत में बात फिर हम पर आती है, व्यक्ति पर। लेकिन यहां भी नजरिया थोड़ा अलग है।
हाँ, स्रोत कहते हैं कि हमें सिर्फ जागरूक उपभोक्ता नहीं बनना है।
तो क्या बनना है?
सशक्त नागरिक।
जागरूक उपभोक्ता और सशक्त नागरिक में क्या फर्क है?
जागरूक उपभोक्ता सोचता है कि मैं क्या खरीदूं, क्या ना खरीदूं, ये जरूरी है पर काफी नहीं। सशक्त नागरिक सोचता है कि सिस्टम कैसे बदलना चाहिए। हमारी असली ताकत सिर्फ सही चीजें खरीदने में नहीं बल्कि एक बेहतर सिस्टम की मांग करने में है।
अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं नागरिक के तौर पर?
हम उन कंपनियों का समर्थन कर सकते हैं जो वाकई टिकाऊ उत्पाद बनाती हैं या वापसी मरम्मत की गारंटी देती हैं। हम ब्रांड से पारदर्शिता की मांग कर सकते हैं। बताओ, तुम्हारी चीजें कहाँ और कैसे बनती हैं, उनका अंत में क्या होता है?
और सरकार से?
तो हम स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर EPR जैसी नीतियों की वकालत कर सकते हैं, बेहतर कचरा प्रबंधन सिस्टम की मांग कर सकते हैं, सामुदायिक कंपोस्टिंग सुविधाओं के लिए दबाव डाल सकते हैं, और सबसे बढ़कर हम अपनी जीवन शैली से ये दिखा सकते हैं कि चीजों को मालिक बनकर जमा करने से बेहतर है उनका इस्तेमाल करना और फेंकने वाली चीजों से ज्यादा टिकाऊ चीजों को महत्व देना।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत के सार को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटें तो पहला ये कि रिसाइकलिंग जैसा हम इसे आज जानते हैं अक्सर एक आरामदायक भ्रम है ना?
हाँ, बिल्कुल। ये हमें अच्छा महसूस कराता है लेकिन अति उपभोग की असल समस्या से हमारा ध्यान भटका सकता है।
दूसरा, कचरा प्रकृति का नियम नहीं बल्कि एक डिजाइन की खामी है। जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं बनाने वालों की भी है।
सही। तीसरा, हमारी लो बनाओ फेंको वाली लीनियर अर्थव्यवस्था ही कचरा संकट की जड़ है।
हाँ, और भारत में तो ये हर तरफ दिखता है। त्योहारों के बाद डिस्पोजेबल बर्तनों का ढेर, ऑनलाइन शॉपिंग की वो बेहिसाब पैकेजिंग, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स जो साल भर में खराब हो जाते हैं।
बिल्कुल। चौथा, असली समाधान कचरा बनने के बाद नहीं पहले खोजना होगा, यानी अपर आर्स, रिफ्यूज, रिड्यूस, रियूज, रिपेयर, इन्हें प्राथमिकता देनी होगी।
और पांचवा, हमें सिर्फ स्मार्ट उपभोक्ता नहीं बल्कि सक्रिय नागरिक बनना होगा जो बेहतर नीतियों और जिम्मेदार कॉरपोरेट व्यवहार की मांग करे।
बिल्कुल सही। और इन स्रोतों में कुछ पंक्तियां वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे एक विचार ये है, नीला कूड़दान असल में रिसाइकलिंग बिन कम, अपराध बोध निपटाने वाला बिन ज्यादा है।
अपराध बोध निपटाने वाला बिन, वाह।
इसमें हम अपने पर्यावरण की चिंताएं डालकर निश्चिंत हो जाते हैं और बिना सवाल के उपभोग जारी रखते हैं। ये सीधा इशारा है कि कैसे रिसाइकलिंग हमें अपनी खपत पर पर्दा डालने का मौका देती है।
और कोई ऐसी पंक्ति?
एक और गहरी बात, बर्बादी कोई पदार्थ नहीं, ये एक संकेत है। ये डिजाइनर और भौतिक दुनिया के बीच एक टूटे हुए रिश्ते का संकेत है।
डिजाइनर और दुनिया के बीच टूटा हुआ रिश्ता?
ये उस सिस्टम का संकेत है जो भूल गया है कि एक सीमित ग्रह पर कचरा फेंकने के लिए कोई दूर जगह नहीं होती। कचरा यहीं रहता है, गायब नहीं होता।
ये बात चुभती है और वो सवाल बदलने वाली बात भी थी।
हाँ, हम पूछते रहते हैं क्या ये रिसाइकल हो सकता है, ये गलत सवाल है। सही सवाल है क्या वाकई इस चीज़ के होने की ज़रूरत है, ये कितने समय तक चलेगी और जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।
ये सवाल तो हमें हर चीज़ खरीदने से पहले खुद से पूछने चाहिए।
बिल्कुल, और अंत में ये पंक्ति शायद पूरी बात का निचोड़ है। एक सच्ची चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब बेहतर रिसाइकलिंग करना नहीं है, इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हमें कम से कम रिसाइकलिंग करने की जरूरत पड़े।
लक्ष्य रिसाइकलिंग को बढ़ाना नहीं घटाना है, ये सबसे बड़ा टेक अवे है शायद।
हाँ, तो सवाल उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों को कैसे उतार सकते हैं।
हाँ, प्रैक्टिकल टिप्स क्या हो सकती हैं?
शुरुआत आज से करें, खरीदने से पहले सच में सोचें क्या मुझे इसकी जरूरत है। रिफ्यूज, क्या मैं कम में काम चला सकती हूँ सकता हूँ। रिड्यूस
और रीयूज और रिपेयर,
अपनी बोतल थैला कप हमेशा साथ रखें। रीयूज, कोई चीज खराब हो जाए तो फेंकने से पहले सोचें क्या इसकी मरम्मत हो सकती है, अपने आसपास के मरम्मत करने वालों को काम दें। रिपेयर
और रिसाइकलिंग के बारे में,
हाँ, जो थोड़ा बहुत रिसाइकल करना ही पड़े तो अपने इलाके के नियम ठीक से समझें, पता करें कि कौन सी चीज वाकई रिसाइकल होती है और कौन सी नहीं, ताकि विश साइकिलिंग ना हो।
सही है।
और एक नागरिक के तौर पर
उन ब्रांड्स और दुकानों को प्राथमिकता दें जो टिकाऊपन या मरम्मत को बढ़ावा देते हैं। कंपनियों से सवाल पूछें, अपने स्थानीय प्रतिनिधियों से बात करें, ईपीआर नीतियों के बारे में, बेहतर कचरा प्रबंधन के बारे में, मोहल्ले में कंपोस्टिंग सुविधा के बारे में। भारत में भी तो कई छोटे शहर और समुदाय अच्छे मॉडल अपना रहे ना कचरा प्रबंधन के, उनसे सीखा जा सकता है।
बिल्कुल, उनसे प्रेरणा ली जा सकती है और अपने यहाँ लागू करने की वकालत की जा सकती है।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये रही कि कैसे हमारा ध्यान सिर्फ रिसाइकलिंग बिन पर अटक गया है, जबकि असली मुद्दा हमारी खपत की आदतें और चीज़ों का डिज़ाइन है। कचरे को एक ज़रूरी बुराई की तरह देखने के बजाय इसे एक सिस्टम की विफलता के रूप में देखना होगा जिसे ठीक किया जा सकता है। ये सोच में बदलाव लाना होगा।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये जानना थी कि कैसे रिसाइकलिंग के नाम पर कचरा एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, जिससे वैश्विक असमानता बढ़ती है। ये पहलू अक्सर छुपा रह जाता है, लेकिन साथ ही ये जानकर उम्मीद भी बनती है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था सिर्फ पर्यावरण बचाने का तरीका नहीं है।
हाँ, ये सिर्फ बोझ नहीं है।
नहीं, बल्कि ये इनोवेशन, नई नौकरियों और समुदायों को मजबूत करने का भी एक जरिया बन सकती है। ये भविष्य के बारे में सोचने का एक ज्यादा टिकाऊ और शायद ज्यादा खुशनुमा तरीका है। हमें बस अपनी सोच बदलने की जरूरत है, कचरे को अंत नहीं एक नई शुरुआत का स्रोत मानने की।
बिल्कुल, कचरे में भी संभावनाएं देखना।
हाँ,
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।